समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माई को होस्ट आकर्षिता, एंड फॉर यू विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की।
सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई टू फाइल फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट इन कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, नेक्स्ट हियरिंग ऑन 17 सितंबर।
सेना ने जम्मू कश्मीर के रजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, 2 आतंकवादी मारे गए, तलाश अभियान कांची जारी।
GST Council meeting underway in New Delhi and the chairmanship of Finance Minister Nirmala Sitharaman.
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा।
IMD issues red alert for rains in Odisha due to deep depression developing in Bay of Bengal.
और जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिज को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता।
And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Himalaya Divas. Well, the Himalayas, often referred to as heaven on earth, hold great significance in India's natural beauty and cultural heritage. The mountain range holds significance in geography as well as biology and culture. And it is celebrated every on September 9th, Monday, that is today. The day aims to raise awareness about the conservation and protection of the Himalayas. And this annual celebration has a profound purpose, the preservation of the unique Himalayan ecosystem and the broader Himalayan region. The Himalayas are not only natural protectors against adverse weather conditions, but also teeming reservoirs of biodiversity. Beyond the environmental significance, Himalaya Day serves as a platform to raise awareness among the public and foster community involvement in conservation activities. And this year we celebrate the 14th Himalaya Divas.
जी हाँ अभिषेक, 9 सितंबर को हर साल हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसे हिमालय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय की पारिस्थितिकी और क्षेत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। हिमालय वन्य जीवों के संरक्षण और देश को खराब मौसम की स्थिति से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत में बहुत महत्व रखता है। ये पर्वत श्रृंखला भूगोल के साथ साथ जीव विज्ञान और संस्कृति में भी महत्व रखती है। हिमालय दिवस की आधिकारिक मान्यता 2014 से मिली, जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे मनाने की शुरुआत की थी। हिमालय दिवस की अवधारणा हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के पर्यावरणविद अनिल जोशी और अन्य समर्पित भारतीय पर्यावरणविद के प्रयासों से हुई थी। उनका लक्ष्य 9 सितंबर को भारत के सभी हिमालयी राज्यों, जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय दिवस मनाने का था, ताकि उन्हें साझा हिमालय सामाजिक पारिस्थितिकी के माध्यम से एकजुट किया जा सके। हिमालय दिवस हिमालय क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालता है। हिमालय न केवल शक्ति का स्रोत है, बल्कि एक वैश्विक विरासत भी है, जो संरक्षण की मांग करती है।
Yes, and the importance of Himalaya Divas goes further than just environmental issues. It is a tribute to the cultural legacy of the Himalayan societies living in harmony with the environment for many generations. And the day promotes a strong understanding of the traditional knowledge and practices essential for preserving the region's ecosystems' delicate balance. And like Akarshita was saying, Himalaya Day's official recognition on September 9th traces back to 2014 when Harish Rao, the former Chief Minister of Uttarakhand, initiated this observance, and the concept of Himalaya Day was born out of the collaborative efforts of Anil Joshi from the Himalayan Environmental Studies and the Conservation Organization and other dedicated Indian environmentalists. And here, Akarshita, I'd like to add that their vision was to observe Himalaya Divas on September 9th across all Himalayan states in India, from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, uniting them through shared Himalayan socio-ecology. And why was this day chosen? Well, the September 9th was chosen possibly because of natural disasters like the 2010 monsoon floods and the 2013 Kedarnath disaster, which highlighted the need to protect the fragile Himalayan ecosystem. And let's also briefly touch upon the significance of Himalaya Divas. Well, Himalaya Day carries immense significance as it highlights the importance of the Himalayan region. Hill cities within the Himalayas confront numerous challenges, including inadequate urban planning, insufficient infrastructure such as roads and water supply, and rampant deforestation. And these issues have far-reaching ecological consequences. The observance of this day underscores the urgent necessity for eco-sensitive urban planning and design in Himalayan hill cities. The Himalayas are not only a source of strength, but also a global heritage that demands preservation. And beyond promoting scientific knowledge, Himalayan Day serves as a call to action, raising awareness and encouraging community engagement in conservation efforts.
हिमालय न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। ये पर्वत श्रृंखला भारत की प्रमुख नदियों गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है जो लाखों लोगों के जीवन के लिए आवश्यक है। हिमालय में ग्लेशियर नदियों को पानी प्रदान करते हैं। अपने भौगोलिक महत्व से परे हिमालय एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य रखता है। बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर जैसे तीर्थस्थल हिंदू धर्म में पवित्र स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है जिनमें से कई वैज्ञानिक और औषधीय महत्व के हैं। और हिमालय सुंदर है लेकिन जलवायु परिवर्तन बर्फ पिघलने और अवैध खनन पेड़ों की कटाई बहुत अधिक शहरीकरण जैसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। अभिषेक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से केदारनाथ पे जो आपदा आई थी वो किस वजह से आई थी क्योंकि हम इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं पेड़ों की कटाई कर रहे हैं पहाड़ों पे हम देखते हैं जो भी कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है उस पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं कि प्रकृति को अपने को संभालने की एक होता है ना कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती।
यस यू मेंशन द 2013 केदारनाथ डिजास्टर एंड दिस डिजास्टर वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट प्रॉम्प्टेड द नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम।
राइट और हिमालय जो है यहाँ पे बर्फ के पैटर्न बदल रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम बहुत अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और जिससे चट्टानों की कटाई और बहुत ढेर सारी ऐसी आपदाएं आ रही हैं जिससे हमको बचना चाहिए और एक तरीके से ग्लेशियरों को भी हम कम कर रहे हैं नदी के पानी को ये प्रभावित कर रहा है बाढ़ और सूखे का कारण बन रहे हैं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत अधिक पर्यटन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव डाल रहे हैं।
यस एंड टू कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन द नेशनल हिमालय दिवस आकर्षिता लेट्स रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ जॉन म्यूअर हु वेरी फेमसली सेड Climb the mountains and get their good tidings. Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy while cares will drop away from you like the leaves of autumn. Well, happy National Himalaya Divas 2024 to all our listeners.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। बहुत से भक्त जो किसी कारणवश नहीं आ सकते, वे बाबा के चरणों में धन का दान करके अपने लिए खुशियों की कामना करते हैं। हाल ही में विदेश में रहने वाले भक्तों के लिए बाबा के चरणों में दान करने की व्यवस्था 4 साल बाद शुरू की गई है।
विदेशों में बैठे बाबा भोलेनाथ के भक्त अब सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को दान करके पुण्य कमा सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को 4 साल बाद फिर से ये सुविधा प्राप्त हुई है। मंदिर न्यास को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें बाबा के विदेशी भक्तों की संख्या भी काफी बढ़ी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी भक्तों से दान लेने की अनुमति हाल ही में मंदिर प्रशासन को मिली है। विदेशों में बैठे बाबा विश्वनाथ के भक्तगण भी अब आसानी से अपनी श्रद्धा अनुसार अपना दान सीधे मंदिर न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। SDM शंभु शरण ने बताया कि खाता संख्या 4329228075, स्विफ्ट कोड संख्या SBININBB125, IFSC SBIN 00090017, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली में विदेश में बैठा भक्त सीधे दान का पैसा भेज सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा भक्तों के माध्यम से दान स्वरूप दी जाने वाली धनराशि का उपयोग हमेशा से जन कल्याण, भक्तों की सुविधाओं में विस्तार करने और पुनीत कार्यों के लिए लगाया जाता है। परिक्रमा के लिए गोरखपुर से सुशील चंद्र तिवारी।
Asia's largest open-air annual trade fair, the Bali Jatra, commemorating Odisha's glorious ancient maritime legacy, will be held on the banks of the Mahanadi River in Cuttack on 15 November 2024. This year, the festival will start on the occasion of Kartik Purnima and will continue for over a week. Cultural troupes from across Odisha and other states will perform Odissi, Chau, Bihu, Mahari, Gotipua, Sambalpuri, Santali, folk dance and other dances in the evenings on the fairgrounds. We have more from a correspondent.
It is the time of the year again when the city reverberates to remember and honor the glorious maritime legacy of Odisha, Kalinga of yesteryears. The Yatra, which marks the culmination of all religious festivities held in the month of Kartika, offers a glimpse into the state's rich cultural heritage, which dates back more than 1,000 years. Bali Yatra means journey to Bali. The traders of Odisha undertook voyages along the sea trade route on huge boats called boitas from the banks of river Mahanadi on the full moon day in the month of Kartika. Thus, Kartika Purnima is an auspicious day for the people of Odisha, as the sailors used to start their voyage to places like Bali, Java, Borneo, Sumatra in Indonesia and Ceylon or Sri Lanka for successful trade on this day. Odia women carry out the ancient ritual of Boita Bandana or boat worshipping by launching a paper boat or a boat made up of banana peels with a clay diya placed inside it. With time, Bali Yatra has changed a lot, but the spirit of celebrating this event has remained unchanged. It brings new hopes for small traders of the region who get a platform to showcase their talent. The festival also brings back pleasant memories of Odisha's rich past and casts a magical spell on the minds of onlookers. Bali Yatra might be fair for some, but it will always be an emotion, a feeling for the people of Odisha. About 2,000 stalls displaying various handicrafts, household goods and foods are expected to appear on the fairground this year. Elaborate security arrangements have been made by police, keeping in mind an expected huge gathering. For Parikrama with Tapan Kumar Maharana, this is Smriti Rekha Taraniya, Akashvani Cuttack.
दुनिया की भीषणतम त्रासदियों में से एक भोपाल गैस कांड के पीड़ितों एवं उनके परिजनों के कल्याण एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब भोपाल गैस पीड़ितों एवं उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा से।
भोपाल गैस पीड़ितों और उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गैस राहत विभाग द्वारा एक कारगर प्रस्ताव तैयार किया गया। गया है। जनजाति कार्य विभाग के अधीन मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट के माध्यम से गैस पीड़ितों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर मंजूरी के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव के अनुसार गैस पीड़ित 1000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इन महिलाओं को 4 साल में 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 250 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्वावलंबन की राह प्रशस्त की जाएगी। महिला हितग्राहियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। गैस पीड़ित महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण गैस राहत विभाग द्वारा चयनित 2 प्रशिक्षण केंद्रों में दिया जाएगा। इसी तरह गैस पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जरूरतमंद एवं इच्छुक युवाओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक युवाओं को जेसीबी, पोकलैन, वाइब्रेटर, रोड रोलर जैसे भारी वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। विभाग द्वारा करीब 100 युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा भोपाल गैस पीड़ितों के ऐसे बच्चे जो चिकित्सकीय सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार 6 माह या 1 साल के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके लिए भोपाल के शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को चिन्हित किया गया है। प्रशिक्षण खर्च गैस राहत विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण देने वाली सभी संस्थाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए भी एक विभागीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से फीडबैक भी लेगी। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
Union Health Secretary Apurva Chandra today released the annual publication Health Dynamics of India, Infrastructure and Human Resources 2022-23 in New Delhi. The publication provides detailed information on health infrastructure and human resources as of March 31st each year. On the occasion, Mr. Chandra stated that the annual publication is a valuable document furnishing much needed information on manpower and infrastructure within the National Health Mission. We have a report.
According to the publication, as of March 31st last year, the country has more than 1,69,000 sub-centers, approximately 32,000 primary health care centers and 6,359 community health centers, serving both rural. According to the publication, as of March 31st last year, the country has more than 1,69,000 sub-centers, approximately 32,000 primary health centers and 6,359 community health centers, serving both rural and urban populations. Additionally, there are 1,340 subdivisional and district hospitals, 714 district hospitals and 362 medical colleges. As per the publication, these healthcare infrastructure is supported by more than 2,39,000 health workers at sub-centers, around 41,000 doctors and medical officers at primary health centers, and over 26,000 specialists and medical officers at community health centers. The subdivisional and district hospital are staffed by 45,027 doctors and specialists. Moreover, there are approximately 48,000 staff nurses at primary health centers, more than 51,000 nursing staff at community health centers, and over 1,35,000 paramedical staff at subdivisional and district hospitals across the country. For Parikrama with Abhishek Pallavi Parmar, Delhi.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Arjun Lal Sethi, born on this day in 1880 in Jaipur, was a revolutionary freedom fighter and educator. Sethi rejected the post of collector offered to him. He said, if he worked for the British administration, then who will work for the freedom of the nation?
In 1907, he established the Vardhaman Jain Vidyalaya, which became an important center of independence activists. He was given the responsibility of the armed revolution in Rajasthan by Ras Bihari Bose. Sethi scripted the attack on Viceroy Harding.
While serving as headmaster of Kalyanmal Mahavidyalaya at Indore, he was arrested and was kept in custody for 6 years until 1922.
In 1923, his son Prakash was critically ill. Sethi received a telegram urging him to come to Jodhpur immediately. Simultaneously, he received another telegram requesting him to travel to Bombay for meeting with the activists.
He decided to go for the meeting rather than see the ailing son.
The life of Arjun Lal Sethi will continue to inspire the coming generations.
On this day in 1943, four brave sons of Mother India were hanged for instigating revolt against the British Empire.
In 1942, the Japanese forces occupied the Southeast Asian region from the British. At the time, the Indian Independence League and the Indian National Army decided to recruit young Indian men to help free India from the British rule with the help of Japan.
In late 1942, 20 trained youths of the League managed to enter India. All of them were arrested soon after entry. Four of them were sentenced to death for waging war against the king. These four sons of Mother India who braved the British might were
Abdul Khader from Vaikom Travancore,
Satyendra Chandra Bardhan from Tripura,
Anandan from Kerala,
Fauja Singh from Mehsana, Punjab.
Abdul Khader's brave last words in a letter to his father were, "Do not grieve for me. From the eyewitnesses of my death, one day you will learn how calmly and bravely I faced death. You will be proud and happy then." Also on this day in 1918, Shambhu Dutt Sharma, a Gandhian freedom fighter, was born in Punjab. In 1942, at the age of 24, he resigned from the British Indian Army and joined Mahatma Gandhi's Quit India movement.
Shambhu Dutt Sharma was imprisoned many times during freedom struggle. Sharma's team was known as Gandhian Seva Brigade. On 15th of April in 2016, at the age of 97, he passed away.
In 1920, the Mohammedan Anglo-Oriental College of Aligarh was converted into the Aligarh Muslim University, AMU. Thus, the present year represents a significant moment in the history of Aligarh Muslim University as AMU completes 100 years this day.
The Aligarh Muslim University played significant role in advancement of modern education on one hand and freedom movement on the other. Sir Syed Ahmad Khan, who founded the Mohammedan Anglo-Oriental College, published a book under the title of Asbab Baghawat-e-Hind, wherein he criticized the British rulers.
AMU produced many leaders who played an important role in the national struggle, such as Maulana Hasrat Mohani, Raja Mahendra Pratap, Ali Brothers, Khan Abdul Ghaffar Khan, to name a few.
Raja Mahendra Pratap Singh went to Germany and floated the idea of setting up a government in exile in Afghanistan in 1915. This was the first exiled government, a revolutionary step that remains a footnote in the history of freedom struggle.
One of the first non-cooperation upheavals was among the students of the Mohammedan Anglo-Oriental College. Reports of these incidents prompted Mahatma Gandhi and Ali brothers to visit Aligarh and appeal to the students to boycott their government-controlled institution.
Captain Abbas Ali, who studied at the AMU, was among few Indians who joined the Indian National Army in Malaya for the liberation of India.
In business news today, India's equity benchmark indices edged higher today with Sensex surging over 300 points and Nifty snapping its 3 days fall to settle above 24,900. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was up 376 points or 0.4% at 81,560, and the NSE Nifty was also up 84 points or 0.3% at 24,936.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। अमरीकी ओपन टेनिस में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। वे अमरीकी ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। और अब समय है उन लोगों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। आज श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि है। देश में मिल्कमैन के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन की अथक मेहनत का ही नतीजा था कि दूध की कमी वाला ये देश दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शुमार हुआ। श्वेत क्रांति और दूध के क्षेत्र में सहकारी मॉडल के जरिए लाखों गरीब किसानों की जिंदगी संवारने वाली शख्सियत डॉ वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 को मद्रास में हुआ था। वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की कहानी भी लिखी, जिसे करीब 5 लाख किसानों ने वित्तीय सहायता दी। विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन के लिए अमूल मॉडल को चिन्हित किया है। अमूल मॉडल को व्यापक और लोकप्रिय बनाने में वर्गीज की बड़ी भूमिका रही है। उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Captain Vikram Batra was born on this day in 1974. He was an Indian Army officer. He was posthumously awarded the Paramveer Chakra, the highest Indian military decoration, for his actions during the Kargil War on 7 July 1999. Batra was killed while fighting Pakistani troops around Area Ledge 0.4875 in the Kargil district of erstwhile Jammu and Kashmir.
1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को करगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं।
माइकल स्टीवन बुबले वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1975। इज अ कैनेडियन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर बोर्न इन बर्नबी ब्रिटिश कोलंबिया। इज ऑफन क्रेडिटेड फॉर हेल्पिंग टू रिन्यू पब्लिक इंटरेस्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशनल पॉप स्टैंडर्ड्स एंड द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग बुक। Buble has sold over 75 million records worldwide and won numerous awards, including 5 Grammy Awards and 15 YONO Awards. Let's listen in to his hit track, Spicy Margarita, and it's from his 2024 album, New King.
Burn my tongue, make me shake, mix it up or give it to me straight, turn me on, make me say,
Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. We was going shot for shine like Desperado.
आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस की जयंती है। लीला चिटनिस ने 52 वर्ष तक अभिनय किया और अशोक कुमार की नायिका रही, तो बाद में अनेक फिल्मों में वे दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की भूमिका की मां की भूमिका में आई। और लीला चिटनिस ने अभिनय करने के अलावा एक फिल्म आज की बात का निर्माण और निर्देशन भी किया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
मेरे आगे होंगे जो हवा तुम धीरे बहो, मेरे आगे होंगे जो हवा तुम धीरे।
Yes, and Akshay Hariom Bhatia, born Rajiv Hariom Bhatia, was born on this day in 1967, known professionally as Akshay Kumar. He is an Indian actor and film producer working in Hindi cinema, referred to in the media as Khiladi Kumar. Through his career spanning over 30 years, Kumar has appeared in over 150 films and has won several awards, including 1 National Film Award and 2 Filmfare Awards. He received the Padma Shri, India's 4th highest civilian honor, from the Government of India in 2009. Kumar is one of the most prolific actors in Indian cinema.
जी हां, 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, मोहरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के कारण अक्षय कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है। आइए सुनते हैं नमस्ते लंदन का उनका ये डायलॉग।
नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है, और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना।
Yes, and we'd like to continue, but we are running short of time, and I'd like to tell our listeners that Adam Richard Sandler, Hugh John Mungo Grant Colonel Harlan David Sanders and also Sarla Devi Chaudhrani was also born on this day.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।